விஸ்வநாதம் கௌதமோகணே மங்களம் குந்து குந்தாரோ ஜெயினிதரோ குமங்கலம். அஹிம்சா பரமோ தர்மகி ஆச்சார குருவர் ஸ்ரீ குந்து குந்த பகவானுக்கு, ஆச்சார குருவர் ஸ்ரீ ஞான சாகர் முனி மகாராஜ்கி. யுக கே ஆதி மே ரிஷபநாத் பகவான் நே जो जीव रक्षा के हेतु वर्णों की व्यवस्था दी है, उसी के माध्यम से यह आज तक का युग लाभान्वित होता हुआ अपने आत्मा को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहा है। उसी संदर्भ में एक ऐसा प्रसंग आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं जो विश्वनाथ की परंपरा से जुड़ा है क्या नहीं, यह हम उसको क्या करेंगे। प्रजा और प्रजा का पालन, प्रजा का पालन करने वाला प्रजापति कहलाता है। पालन करने वाला हमेशा हमेशा है, कहां कहां तक प्रजा है उसको अपने दृष्टि में पहले रखता है, तभी हम उसका पालन कर सकते हैं जब हम उसके बारे में निकट से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी का मतलब यह है कि उसकी समस्या क्या है ये देखना अनिवार्य होता है। वह समस्या किस वजह से है यह भी जानकारी नहीं है तो हम उस समस्या को कभी दूर नहीं कर सकते। वह समस्या बाहर से है कि भीतर से है, उस समस्या का कारण स्वयं है क्या पर है, ये भी हमें देखना अनिवार्य होता है। हमारे आचार्यों ने हमेशा हमेशा विवेक को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है वह यदि केंद्र दूषित हो, अनकनेक्टेड हो, तो तीन काल में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी, भीतरी भी और बाहरी भी। जब कभी भी कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, जिस पर आक्रमण हो जाता है उस राज्य में सर्वप्रथम जो आक्रमण करने वाले हैं उनके रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जाता है। यदि मान लीजिए वह आक्रमण करके भीतर आ रहे हैं तो यह कह दिया जाता है कि रास्ते तो रहे आप, कोई रास्ता ही नहीं अपने लिए, इसलिए उसके ऊपर जो बोर्ड्स हैं, माइलेज स्टोन हैं, उनको गिरा दिया जाए, अथवा वह संकेत के ऊपर कालिमा पोत दी जाए ताकि आगे कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, कौन सा नगर है, किधर से कैसा जाता है, ये कोई भी जानकारी प्राप्त न है। जितने भी टेलीफोन के लाइन्स हैं वो सब काट दी जाते हैं। फिर इसके उपरांत जब बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण हो रहा था, या बांग्लादेश के ऊपर तो नहीं है किंतु पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, उस समय के बाद पूरे के पूरे शहर में, नगर में जितने भी रात में लाइट बंद कर दो, जबकि लाइट की व्यवस्था की आवश्यकता हो जाती है, लाइट बंद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लाइट का हमेशा हमेशा दो उपयोग हुआ करते हैं, एक सदुपयोग भी होता है और एक दुरुपयोग भी होता है। लाइट हमारे विकास के लिए कारण है तो हमारे विनाश के लिए भी कारण है, इसलिए लाइट बंद करो यह गलत नहीं है, यह ठीक है। समय पर दिन में यदि लाइट जलाते हैं तो बंद करो कहना ही पड़ता है, और रात में यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है उसमें लाइट बंद कर दो ऐसा कहा जाता है। तो एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर लिया, परिस्थिति क्या थी वह तो वो जाना है, लेकिन बहुत सोच समझ करके किया था यह अवश्य है, और जब अति हो रही थी उस समय की बात है, जब आक्रमण कर लिया और आक्रमण करने के उपरांत उसमें विजयी होकर के लौट रहे, लौटते समय अब तीन चार दिन के उपरांत वो आने वाले हैं, तो नगर सजाया गया है, एक घटना घट जाती है, जो महाद्वार है वह गिर जाता है। अब महाद्वार जब गिर जाता है, राजा जिस द्वार से प्रवेश करने वाले और विजयी होकर के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, राजा को यह वार्ता पहुंच जाती है, जब तक दरवाजा नहीं बनेगा तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगा। अब प्रवेश कराना है और द्वार बनाना है, बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर कार्य हुआ, दरवाजा बन गया, राजन बन गया है, लेकिन पुनः सुनने में आया द्वार पुनः गिर गया है। राजा ने कहा ऐसे असावधानी क्यों हो रही, भगवान पता नहीं लग रहा ऐसा क्यों हो रहा। इस प्रकार बना तो चले लेकिन वह द्वार बना नहीं। राजा ने कहा कैसे बनेगा, हमेशा हमेशा विवेक जब गोल हो जाता है तो अपने पुरुषार्थ की ओर दृष्टि न रख करके हम उस ओर दृष्टि रखते हैं कि भैया कोई न कोई होम करो, विधान करो और कोई वरदान मांगो, हम ये कार्य करते हैं, हम ये कार्य करते हैं। दीनताओं के प्रकोप के कारण ऐसा हुआ था क्योंकि वहां पर कुछ अन्याय अत्याचार वगैरह होते थे। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जब तक यहां पर नरबलि नहीं होगी तब तक यह दरवाजा खड़ा नहीं होगा। कौन तैयार होगा, सब जगह बात पहुंचा दूं, जो तैयार होगा उसके लिए चाराना राज दिया जाएगा और मां सम्मान के साथ उस व्यक्ति के परिवार को वहां पर अच्छे ढंग से सुरक्षित रखा जाएगा, आदि आदि व्यवस्था। चाराना चाराना राज बहुत होता है, लेकिन पूरा राज छोड़ना बहुत कठिन होता है। चाराना राज बहुत होता है लेकिन पूरा राज छोड़ना बहुत कठिन होता है। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति छोड़ दे पूरा परिवार तो कम से कम राजा कहलाएगा, करना चाहिए। कई परिवारों के मन में ये बात आ गई, राजा की आज्ञा है करना चाहिए, कोई भी सामने नहीं आया। एक हफ्ता इसी में निकल गया, एक व्यक्ति भी तैयार नहीं। बहुत लोग दिए गए, एक व्यक्ति के मन में आया कि वैसे ही मैं दरिद्र हूं, मेरे परिवार में खाने पीने के लिए नहीं और परिवार भरा हुआ है, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो सारा परिवार जो शांति के साथ जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन जिसने सोचा उसने अपने आप के बारे में नहीं सोचा, जिसने सोचा मेरा परिवार दरिद्र है ये भी कह रहा, मतलब स्वयं भी दरिद्र हूं ये भी कह रहा, लेकिन परिवार के कौन से सदस्य को खड़ा कर दिया जा उसमें अपने आप को वह नहीं चुन पा रहा। पत्नी के सामने जाकर के मेरे मन में ऐसा भाव हुआ है, बहुत सोच करके मैं कह रहा हूं, आपका क्या विचार है? सोचा तो आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अब किसको तैयार कर दिया जा? वह भी कहते मैं तैयार हो लू, ये नहीं भी किसको तैयार कर दिया जा, वह भी सोचते अपने पास तो 7-8 बच्चे हैं। दोनों ने सोचा, मतलब अपने दोनों को नहीं सोचा मैंने, अपने पास तो 7-8 बच्चे हैं और सब हीन दीन, शिक्षण नहीं, दीक्षा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक आध को तैयार कर लिया जा। किसको तैयार कर लिया जाए? बड़े को बुला दिया जाए। जब बड़े को बुला दिया गया तो बड़ा तो होशियार होता है, सोचो विचार करो। वह कहता है सोचो विचार करो, आप तो वृद्धावस्था की ओर है, पूरा का पूरा घर का भार हमारे ऊपर आने वाला है, पूरा परिवार तभी सुखी बन सकेगा जब मैं जीवित रहूंगा, इसलिए आपने सोचा है बहुत अच्छा है, जिनसे आप कहो। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनको तो रखो। दूसरा आ जाता है, दूसरा भी इसी ढंग से, तीसरा भी इसी ढंग से, सब बच जाते हैं। अब अंतिम छोटा आता है, छोटे का नंबर आता है, उसको अभी विशेष ज्ञान नहीं, जैसे आप कहो उसके लिए हम तैयार। उसके सामने सब बातें नहीं कही गई, तैयार हो गया, क्या हो गया, सब लोगों ने कहा कि हां कम से कम अब राजा का प्रवेश इसमें हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य ने यही सोचा, राजा तो आ जाएंगे लेकिन ये दृश्य कैसे देखा जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्वयं राजा वहां पर आएंगे और वहां पर बलि चढ़ा दी जाएगी, नरबलि चढ़ा दी जाएगी, आज तक ऐसा दृश्य तो नहीं देखा। मानव अपनी जाति के बारे में कभी कभी बहुत ज्यादा सोचता है, कोई कार्य करना होता है तो मानव अपने आप को पृथक करके ही सोचने लग जाता है। यह मानव ही प्राणी है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्राणी होते हुए प्राणियों का मालिक बनना चाहता है और बनता ही आया है। जहां कहीं भी कवि, लेखक, संत एक विशेष उद्बोधन देना चाहते हैं या हीन कार्य की निंदा करना चाहते हैं मानव को भी नर कीटक कहा है, मतलब इसको भी कीड़ा कहा है, लेकिन वह व्यंग के रूप में कहा है। इंग्लिश भाषा में मैन को एनिमल कहा है। मैं सोचा इसको एनिमल प्राणी की पशु नहीं, कॉमन शब्द है जो एक प्रकार से मैन कहते हुए भी उसको एनिमल कहने का अर्थ ही यही है कि कुछ उसे अच्छा कार्य करना चाहते हैं। तो जब नर कीटक कहा जा सकता है, मानव को भी एक प्राणी कहा जा सकता है, सामान्य कहा जाता है, तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि प्राण सबके पास है किंतु आकार प्रकार भिन्न है। कभी कभी मनुष्य के मन की अपेक्षा से भी पशुओं के मन बहुत उदार, बहुत विशाल और बहुत दया से आपूरित होते हैं। जबकि मनुष्य के मन की समीक्षा कर ले तो बहुत कठिन होता है, मानव मन की समीक्षा बहुत कठिन होता है, आज तक है। गांधी जी के अवसान के उपरांत ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से यह कहा गया कि गांधी जी की खोपड़ी मांग ली जाए और जो चाहते हैं पैसा वो दिया जाएगा। कई लोगों ने ये नहीं सोचा होगा अपने अपने खोपड़ियों के माध्यम से इतनी बड़ी राशि आ रही है, समस्या तो है ही, दी जा। लेकिन सात्विक खोपड़ी का एक ऐसा उत्तर मिला कि नहीं, उसको हम बेच नहीं सकते। वो बेचने की वस्तु नहीं, जिसके माध्यम से रक्षा की विचारधारा बह जाती है, उस खोपड़ी को बेच नहीं सकते, क्योंकि उसका यहां पर अस्तित्व बना रहेगा, उसके संस्कार भी बने रहेंगे, तो भी हम वर्षों के बाद भी उन विचारों को साकार कर सकते हैं। जहां तक इस राष्ट्र को पहुंचाना है वहां पर पहुंचा सकते हैं, इसलिए नहीं बेचना। सब व्यक्तियों के मन में यही आया, लेकिन राजा के मन में यह बात नहीं आई, मुझे प्रवेश करना तो एक नरबलि होना चाहिए। कभी कभी राजा लोग जो पालक होते हैं वे प्रजा से घनिष्ठ संबंध नहीं रखने से वे प्रजा पालन के लिए वे तैयार हैं, लेकिन एक तरफ से प्रजा का हनन करना भी प्रारंभ कर देते। जब पालन की समस्या आ जाती है वहां पर संहार की भी समस्या आ जाती है। किंतु क्षत्रिय वो होता है क्षतात् पापात् दोषात् त्रायते इति क्षत्रिय। ये क्षत्रिय के डेफिनेशन अपने आप में कि वो त्राता है, हंता नहीं, वो एक प्रकार से रक्षा करने वाला हो जाता तो किसी का भक्षण करने की बात नहीं कर सकता। आक्रमण कोई करता है तो उसे आक्रमण से दूर करने के लिए बात तो की जाती है, लेकिन मारने की बात नहीं आती। न प्रहर्तुम अनावशी अभिज्ञान शाकुंतल में एक पंक्ति आती है कि क्षत्रिय के हाथ में जो तलवार रहती है वह तलवार मारने के लिए नहीं, किंतु जो व्यक्ति मारक होता है उसके सामने दौड़ करके
जाकर के दिखाने की आवश्यकता है, किंतु अनावश्यक प्रहर्तुम ना, एक पंक्ति बहुत अच्छी है। अनावश्यकता निरपराध व्यक्ति के ऊपर शस्त्र चलाना एक क्षत्रियता नहीं, अपराधी के ऊपर शस्त्र चलाना भी एक प्रकार से जल्दीबाजी है। उसको पटोलो, वो क्या चाहता है, क्यों मारता है, क्यों इस प्रकार के अनर्थ कर रहा है, यह एक प्रकार से न्याय संहिता है। किंतु बहुत जल्दबाजी में जो व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति क्योंकि अविवेकपूर्ण ही कार्य कर जाता है, तो जब छोटे लड़के को तैयार कर दिया गया, कोई मना कर नहीं सकता उस परिवार को, लेकिन भीतर से किसी के मन में यह बात नहीं आ रही, इस नव बालक जो होनहार बालक है उसका वध हो जाए, जुलूस निकाला जा रहा है और वह उसको सजाया धजा है, अच्छे खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, और वह सोचता है कि मुझे तो आज ऐसे पकवान मिल रहे खाने के लिए, लेकिन कसाई का जो बकरा होता है उसको हरा भरा खिलाया जा रहा है, भविष्य उसका अंधकार। माता पिता भाई बहन सारे के सारे भीतर से नहीं चाहते हुए भी दरिद्रता को दूर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहा है। जब लड़के को यह ज्ञात हो गया कि अब चंद मिनटों के उपरांत यह कार्य होने वाला है, तब मां की गोद की ओर बढ़ता है तो वहां पर जाने नहीं दिया जाता है, पिताजी की ओर जाता है तो जाने नहीं दिया जाता है, भैया की ओर जाता है तो वह भैया की ओर जाते हुए भी भैया भी उसको नहीं बुला सकता, क्योंकि ऐलान हो चुका है, अब तो यह निश्चित कार्य हो चुका है, अब कहां जाए। परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी शरण लेने के लिए तैयार नहीं, तैयार है भी लेकिन आज मिल नहीं सकते, ये बात तो यह है। राजा के पास चला जाए, राजा राजन सब लोग ये चाह रहे हैं और आप राजा हैं, मेरे लिए शरण दे दो, सबके लिए आप शरण दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य है मेरे लिए भी शरण दे दो। अब वो राजा कहता है, बेटा इन सब व्यक्तियों के पालन के लिए आज यह कार्य अनिवार्य हो गया, मतलब मेरी आहुति के माध्यम से, मेरी बलि के माध्यम से आप लोगों का सब संरक्षण होगा। एक बड़ी विचित्रता है, जब समस्या आ जाती है उस समस्या की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह मानव की सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी मानी जाती है। सब देवताएं क्रुद्ध हैं तो संतुष्ट हो सकती है, मानव यदि उतावले कर दे तो संतुष्ट हो सकती है। अभी तक सोचने से यह ज्ञात होता है, जब कभी भी हम अपने अविवेक के कारण बहुत बड़े बड़े धर्म ऐसे बना रखे हैं जिनके द्वारा बड़ी बड़ी हत्याएं हो गई और फिर भी हमने उसको धर्म के रूप में स्वीकारा, लेकिन विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान धर्म है, वह कहता है यह कोई धर्म नहीं हो सकता। मारने के माध्यम से, आहुति के माध्यम से कल्याण नहीं हो सकता, किसी का रोग ठीक नहीं हो सकता। यह बात अलग है, आज के विज्ञान के लोग भी झाड़ू की ओर आ रहे हैं, बताते हैं। झाड़ू का मतलब आप समझ गए, यहां पर कोई झाड़ू नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के भूत को उतारने के लिए यह अनिवार्य हो गया है, और वो भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर के। रोगी झाड़ू को देखता है तो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, वो भी धीरे धीरे आने लगे हैं। विज्ञान को सोचना चाहिए उस झाड़ू के प्रभाव में स्वयं ना आए, यदि सामने वाला भूत आ जाता तो कोई बात नहीं। ये हुआ विवेक के द्वारा, किसने काम नहीं किया। जब छोटे लड़के ने सोचा, जब राजन के द्वारा ही ये कार्य हो रहा है, शरण तो कहीं भी नहीं। सुना है कोई भी पृथ्वी पर शरण नहीं देता है तो और कोई नहीं रहा, फिर आप तो यूं ऊपर देखो। विज्ञान की ये कमी नहीं है, विज्ञान ने आज तक, मैंने सोचा था संस्कृति के बारे में बहुत कम सोचा होगा, लेकिन नहीं। धरती पर जो कि जो कोई भी व्यक्ति हैं, उनकी बात मानते हुए भी अभी तक विज्ञान ने एक को शरण मान ही रखा है, वह यही है। पालन करने वाले भी पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको छोड़ दो, वो पालन करने वाले है ही नहीं। लेकिन भगवान तो इस प्रकार की बात कभी भी नहीं चाहता, उसको यह विश्वास था। हे भगवान, यदि मेरी आहुति के कारण ये पूरी पूरी सबकी रक्षा हो जाती तो कोई बात नहीं, यदि आपके रहते हुए मैं मर जाऊं तो कोई बाधा नहीं, और यदि आपके पास शक्ति है तो मेरे मरने की भी क्या आवश्यकता है, आप कोई तरीका तो ढूंढो। लेकिन किसी सभा में से एक सदस्य उठ करके नहीं कहा, हां भगवान ये कार्य होना चाहिए। भगवान के ऊपर विश्वास बहुत कम हुआ करता है, इसलिए सम्यक दृष्टियों की संख्या बहुत अल्प मानी जाती है, और भगवान को मानने वालों की संख्या कम नहीं हुआ करती है। समस्या आ जाए छूट दे देना महाराज, हम ऐसा नियम ले लेते हैं, भगवान को मानते हैं, समस्या आ गई तो छोड़ देते हैं वो एक समय के लिए, फिर बाद में मान लेंगे। ऐसी समस्या नहीं होना चाहिए। आमतौर से व्रत ग्रहण करना ऐसा ही हुआ करता है, चोरी करना हम चोरी नहीं करेंगे, समय आ जाए तो कर लेंगे, फिर बाद में भाग्य दिखला कर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। समय पर काम किया हुआ ही सही माना जाता, बाकी समय में माना कुछ नहीं माना जाता, वह तो चल रहा है, अपने आप जो चलता है उसको हम चला नहीं रहे, मान लेते हैं कि हम चला रहे हैं। अन्यथा शरणम जब कहा उस समय वहां की जो देवता थी वह प्रसन्न हो गई, और एक प्रकार से परीक्षा हो गई। जब वह सामने देवता खड़े हो गई तब राजा परिवार प्रजा पूरी की पूरी थरथर कांपने लगी, अब क्या होता क्या पता, क्योंकि देवता तो इस बालक की ओर हो गई, अब हमारा मुश्किल है। सब लोग हाथ जोड़ते हैं, बालक भी सोच रहे ये लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, और पहले क्यों नहीं हाथ जोड़ रहे थे। परीक्षा की घड़ी, अब हमारा जीवन क्या होगा। तो ये अनंत काल से जब जीते आए ही, अनंत काल तक आगे जिएंगे, इस विज्ञान को सामने क्यों नहीं रखा जाता है। आज का विज्ञान जो अभी आपके सामने, जो एक डॉक्टर ने कहा
आप लोग जा करके उनको विनती करो, मेरे हाथ में पेन है, आपको ठीक करना है, जो आप पैसा चाहो हम देने के लिए तैयार है। उस समय वो यही कहेंगे, हाँ देखो भावना मैं यही कर रहा हूं, प्रयास करूंगा, आप घबराओ नहीं और पैसे की भी कोई चिंता मत करो, क्योंकि हार्ट की बात है। पैसे की चिंता करने से भी हार्ट गड़बड़ कर जाता है, इसलिए अब ये बात अलग है, ये मरीज यदि पैसा नहीं लेगा तो डॉक्टर का हार्ट क्या कर रहा है ये तो वो डॉक्टर जाने।
पैसा नहीं आता तो उसके लिए भी धक्का लग सकता है, और ज्यादा पैसा आ जाता तो भी धक्का लग सकता है, दोनों तरफ से काम हो सकते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक लोग पुरुषार्थ करने वाले, सही दिशा में पुरुषार्थ करने वाले ये कहते हैं कि तुम्हारा काम ठीक होगा, मैं भावना ये कर रहा हूं, पुरुषार्थ ये कर रहा हूं, इसमें तिलमात्र भी प्रमाद नहीं करूंगा, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करूंगा, फिर तो आखिर डॉक्टरों के हाथ जब यूं देखता हूं, मुझे लगता है कि इन लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा अवश्य है, और भाग्योदय में भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने आत्म पुरुषार्थ करने वाला ही फलने वाला है, फूलने वाला है, निश्चित बात। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य तभी साथ देता है जब वह भगवान को अपनी दृष्टि में रखता है। हे भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं अपने पुरुषार्थ को ठीक ठीक कर सकूं, मेरे बुद्धि में ऐसा विकार ना आए जिस विकार के कारण मुझे मेरे दृष्टि में केवल अर्थ आ जाए और जो सामने रोगी है वह गौण हो जाए, ऐसी मुझे बुद्धि ना दे, एक क्षण के लिए भी मेरा लोभ खड़ा ना हो, मैं पुरुषार्थ के बल पर जो कुछ मिलता है वो ले लूंगा। यह युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान ने हम लोगों के लिए वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 2400 भगवान की स्तुति करते हुए तीसरे नंबर के जो शंभवनाथ भगवान हैं उनकी जब स्तुति करते हैं तो उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया, तम शंभव संभवतर्ष रोगे संतप्य मानस्य जनस्य लोके आसी रिहातस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथानाथ रुजान प्रशांत। जैसे धरती पर वैद्य लोग रोग शारीरिक रोग को दूर कर देते हैं, हे भगवान आप भी ऐसे वैद्य हैं। कैसे वैद्य हैं? जन्म जरा मृत्यु के लिए कारणभूत जो मोह है, ये रोग लगा हुआ है, आपके दर्शन करने से अनंत कालीन यह श्रृंखला यह परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है, रुजाम प्रशांति यथा वैद्य। आकस्मिक विषय, संतों ने यह कहा है वैद्य वह होता है अकारण हेतु होता है, आप चरक पढ़कर के देख लीजिए, कल्याणकारक पढ़कर के देख लीजिए, निघट्टू को देकर लीजिए, इन सारे सारे ग्रंथों के आदि में मंगलाचरण हुए हैं, मंगल कामना की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है, उन्होंने कभी भी इस बात को भुला ही नहीं। वो अकारण होता वैद्य, अकारण का अर्थ क्या होता है? अकारण का अर्थ होता है प्रतिपलन प्रतिफलन अनिच्छनसन, कोई भी प्रतिफल की वांछा नहीं है वहां पर। ये सबसे बड़ी शर्त है वैद्यों के साथ और डॉक्टरों के साथ। रोगी के सामने रोगी कहता है मेरे दर्द दूर करो, आपके शरीर का दर्द तो मैं दूर करूंगा, मेरे मन का दर्द तो दूर करो, क्या चाहिए आपको? इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा तो हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं, तुम जीवन चाहते हो तो देख लो। तो यदि ऐसा कहेगा तो बहुत सारे रोगी इस बात को सुनकर के ट्रीटमेंट में इतनी राशि लगेगी तो वह 10 दिन के बाद मरण होना तो आज ही मरण हो जाता है। मेरे तो ट्रीटमेंट से 8 दिन के बाद मरण होना तो आज ही मरण हो जाता है। मेरे तो ट्रीटमेंट सेवा तो होगी नहीं। ऐसे कौन व्यक्ति है यहां पर मेरे लिए इतनी राशि देकर के सहयोग दे सके? और यदि राशि देने वाले भी कहते हैं भैया राशि तो मैं दे सकता हूं लेकिन व्याज सहित देना पड़ेगा, ये तो और दर्द है, एक और सिर दर्द है, तो इससे बढ़िया भगवान जल्दी बुला लो। बिल्कुल निश्चित बात है कि इस स्थिति में जल्दी बुलाना नहीं ठीक है, क्योंकि मैं कार्य भी नहीं कर रहा हूं और बैठ करके खाना खाऊंगा तो मुझे लाकर कौन खिलाएगा? इससे बढ़िया तो यह है कि मैं दूसरे के लिए भार न बनू। भगवान जल्दी से उठा दो, आंख बंद कर दो। ये कहते या ऐसे सुनने में आ जाते। वैद्य लोगों को समझना चाहिए, डॉक्टरों को समझना चाहिए, वह बिल उसके सामने न रखिए, गिनती न करे, मिला ठीक है, देना उसका कर्तव्य होता है, वो देगा और उसकी भावना के माध्यम से आपको अपने आप ही मिलता चला जाएगा। अर्थ के माध्यम से कोई जीवन चलता नहीं, न चलाया जा सकता। जब देवता प्रसन्न हो गई, ज्ञात हुआ राजा ने मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये कहना चाहिए था, कोई आवश्यकता नहीं एक नरबली के माध्यम से मैं दरवाजा बांधू, ये कोई आवश्यकता नहीं। बुद्धि काम नहीं कर पाती, यह आज का विज्ञान इन सब बातों को नहीं चाहता। और वह दया के क्षेत्र में आकस्मिक विषक ये बहुत भोजन कर रहा है। आप भोजन करके दूसरे काम करेंगे लेकिन वैद्य लोग और डॉक्टर लोग ये भोजन के लिए बैठे हैं तो भी आधा भोजन कर लेंगे वहीं के वहीं। जिस प्रकार मुनि महाराज अंतरा आ जाए तो मुख का जो ग्रास है उसको भी नहीं खाते, उसी प्रकार इन लोगों की जीवन की चर्या है। रात के 12 बजे तो रात के 12 बजे खड़े होते हैं, दिन के 12 बजे तो दिन के 12 बजे खड़े होते हैं, जो कोई भी समय कोई भी समय, क्योंकि रोग का कोई ठिकाना समय थोड़ी होता है, और उसी समय जा करके उसको ड्यूटी देते हैं। इससे बढ़कर के प्राणियों की सेवा कल्याण करने का इससे बढ़कर के और कोई कार्य है ही नहीं। राजा जिस प्रकार रात में और दिन में भी पर चक्र का आक्रमण हो जाता है तो उसको लड़ करके सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार आज भी इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए खड़े हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है इनका, और ये यदि वर्ग एक दिशा में एक विचार के साथ कार्य कर ले तो संभव है वह कुर्सी भी हिल सकती है। वो ये कर्म कह सकते हैं कि हम इन प्रजा के पालन के लिए, रक्षा के लिए, सेवा के लिए रात दिन काम कर सकते हैं, रात को दिन को एक कर सकते हैं, तो आप लोगों के यहां ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस समय एक राजा था, एक राज दरबार था और एक राजवाड़ा था और एक राज महाद्वार था, उसकी रक्षा के लिए एक नरबलि की आवश्यकता हुई, अवेक पूर्ण हो गई। मैं यह उदाहरण देकर के इसलिए आपको जागृत करना चाह रहा हूं। अब वह तो एक राजा था, यहां पर भारत में अब वर्तमान में एक राजा तो कोई है ही नहीं। सुन रहे हो क्या? नहीं? हाँ, आपका विषय है। एक राजा है ही नहीं और वह यदि भारत के लिए भारत को उन्नत बनाना चाहता है और निरपराधी पशुओं को, मनुष्यों को तो नहीं, मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, लोकतंत्र है ये, लेकिन लोकतंत्र में बलि चढ़ाने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक गवर्नर आए थे, उनका नाम मैं भूल गया, लॉर्ड विलियमसन क्या और कोई है, लॉर्ड बेंटिंग भी हो सकते हैं, जो सती जाने की पद्धति और पशु बलि को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। पशुओं के बलि तो रुक गए, लेकिन यह निश्चित है जो ही स्वतंत्रता मिली पशु बलि एक दूसरे तरफ से प्रारंभ हो गई और मोटे ताजे वृद्ध भी नहीं ऐसे ऐसे जानवरों को पकड़ करके बलि चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बलि का मांस जो है विदेश के लिए पहुंचना प्रारंभ हो गया। विज्ञान को सोचना चाहिए ये क्यों किया जा रहा है। हृष्ट पुष्ट जानवरों का कत्ल वध करके आज ये कार्य हो रहा है। कोई राजा होता तो हम राजा को पूछ सकते, लेकिन 2-3 वर्ष से लगातार मैं इसी बारे में विशेष तौर से बोलता आ रहा हूं। सभा के सामने इसलिए बोलना अनिवार्य हो गया क्योंकि लोकतंत्र में सभा के सामने ही रखी जा सकती है, लोकसभा वहां तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि यही के लोग वहां पर भेजे गए हैं ये हमें ज्ञात हो, ऐसा है भैया, ऐसा ही है। अच्छा, तो लोकसभा वहां नहीं है, लोकसभा तो यहां है, यहां के कुछ व्यक्तियों को वहां पर भेजा गया, उनके पास जाने की क्या आवश्यकता, किंतु आपके सामने तो रखा जा सकता है। यह एक काम बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए संस्कृति के लिए कलंक है, सत्ता के लिए भी एक कलंक है और आज के विज्ञान के लिए यह एक चुनौती है। क्या ये आज का विज्ञान इसको रोक नहीं सकता? आज के विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है, ये इतना जो वध हो रहा है इसका परिणाम दूसरी तरफ से आ रहा है, लोक की उन्नति में यह बाधा है। जो बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं उस भूकंप के कारण आज का यह पशु वध और कत्ल खाने है, ये ज्ञान का विषय है और एक आस्था का भी विषय है। आप सम्यक दर्शन की बात करते हैं और जो आज पढ़े लिखे हैं मैं उनके सामने ज्ञान की बात करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा और ये निश्चित बात है, वर्षों पूर्व में ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक लेशा समुद्गात होता है जिसमें वेदना समुद्गात होती है, वेदना समुद्गात जिस समय हो उस समय कम से कम भी अपने आत्मा के प्रवेश इस शरीर से बाहर चुगने के रूप में दौड़ जाते हैं और वहां तक चले जाते हैं जहां पर जिसके माध्यम से वेदना हो रही है उसके प्रतिकार के लिए आत्मा के प्रति बाहर चले जाते हैं। एक छोटा सा लड़का भी हो तो वे गुस्सा में आ जाए तो कषाय समुद्गत हो जाए तो बड़े बड़े व्यक्ति भी उसको पकड़ नहीं सकते। डॉक्टरों को यह ज्ञात होगा यदि वेदना होती है उस समय चार चार डॉक्टर्स और सारे पकड़ ले तो भी वह तकत को ही हिला देता है और वह जमीन में गड्ढा पड़ जाता है। इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? जब आत्मा में इतनी वेदना होने लग जाती है उस समय और प्रतिकार के लिए ऐसा करने लग जाता है उस समय डॉक्टर के ऊपर लात भी पड़ जाती है, वह थूकता भी है और वह गाली भी देता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर को कषाय समुद्गत होता हुआ मैंने उस समय नहीं देखा और नहीं सुना। आप ही बताओ भाई डॉक्टर साहब ऐसा होता है क्या? पहले आपकी परीक्षा की जाती है, यदि इस प्रकार के प्रसंगों में आपको कषाय नहीं होते तो ही आपको वह उपाधि दी जाती है। रोगी लात मारेगा, रोगी का दोष नहीं रोग का दोष है, जब वह ठीक होगा तो उसी हाथ से जो आपको चाटा दिया था हाथ जोड़कर खड़ा होता है, आपने बहुत बड़ी कृपा की, हमारी बड़ी भूल हुई, महान अपराध हुआ, आपने चिकित्सा की और आपके लिए तो हमने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो उस समय में भी उनको डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपने नहीं किया और जिसने किया था उसको भी हमने लात मार के भाग दिया, भगा दिया, वो आ ही नहीं सकता। शर्मिंदा हो जाता है रोगी, देखो ये कैसे। ये समझ बात का प्रकरण वस्तुतः थी कि कत्ल खाने में एक दिन में 10-10 हजार 15-15 हजार बड़े बड़े जानवरों का वध होता है, क्या उनको वेदना नहीं होती होगी? जब वेदना होती है तो समुद्रघात नहीं होता होगा, समुद्रघात होता होगा तो आत्म प्रदेश कहां पर जाते होंगे? बहुत दूर दूर तक चल जाते हैं। वो शक्ति का प्रभाव यह है कि बड़े बड़े भूकंप भी होने को हो रहे हैं। तो महाराज इस प्रकार की यदि वेदना होती है तो उस वेदना का प्रतिकार हम कैसे करें? तो राज सरकार यदि नहीं कर सकती तो कौन करेगा? क्योंकि आज तो अन्यथा शरणम वाली बात है, कोई भी नहीं सुनता। सामूहिक जब कार्य होता है तो सामूहिक कार्य करने, उसको दूर करने के लिए समूह की भी आवश्यकता होती है। एक राजा यथा राजा तथा प्रजा, एक राजा को यदि परिवर्तित करना है तो परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सारे के सारे यहां राजा बैठे हैं, आप राजा नहीं है क्या? बताओ महाराज, हमें तो किसी ने आज तक कहा नहीं कि हम राजा है। गलत बात है, लोकतंत्र का फिर तंत्र ही आपको ज्ञात नहीं है। लोकतंत्र में क्या किसको बोलते हैं? प्रजातंत्र। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली है और 26 जनवरी के दिन क्या बना मिलता हूं? रिपब्लिक डे, प्रजातंत्र दिवस। आज प्रजा के हाथ में सत्ता आई, चुन करके वह भेजेगी। तो आप लोगों के पास इतनी सत्ता है, क्षमता है, और फिर भी आप लोग नहीं सोच रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, लोकसभा और लोक ये दोनों ही बिल्कुल ही विवेक के काम लाई दे रहे विवेक को। ऐसी स्थिति में करोड़ों का वध रुक नहीं सकता। वैज्ञानिकों का यह कर्तव्य है, वे यदि नेताओं के सामने रख दे तो अवश्य आपकी बात सुनाई जा सकती है। आज आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया, ऐसे ऐसे भैंस, ऐसे ऐसे गायों को जो अच्छे संस्कारित करके उनके दूध इत्यादि वर्धन के लिए किया जा रहा, तो उनको जो अच्छे गाय और भैंस हैं उन्हीं वध हो रहा है, क्योंकि उसके मांस की कीमत ज्यादा होने के कारण। देखो विज्ञान उलट गया है आज, जिसके माध्यम से संवर्धन करके, दूध के संवर्धन के लिए नहीं, मांस के वर्धन के लिए उनको पुष्ट बनाया जा रहा। एक समय हुआ आ सकता है कि पुष्ट पुष्ट नर को भी अब किसी भी प्रकार से इस काम में लाया जा सकता, और लाएंगे। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी, नहीं मिलना होगा, धीरे धीरे चालू हो जाएगा, तो नर मांस का भी निर्यात संभव हो सकेगा। जो मांस खा करके ही रहना चाहता उनके लिए यही मांस अपेक्षित है, तो यह प्रजातंत्र में नहीं चल सकता और चलना नहीं चाहिए। दूसरा कोई राष्ट्र चाहता है तो आप ऐसे करोगे क्या? लेकिन महाराज ये चल रहा है, आजकल चलाया जा रहा है, इसलिए चल रहा है। सुनने में आया है कि चुनाव से पूर्व में इसी शर्त पर गठबंधन हो गया, जिस राज्य में हमें गोमांस का हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिलेगी तो हम अवश्य ही आपके लिए समर्थन करने के लिए तैयार है। कौन से राज्य ने किया आप जानते होंगे, हमें ज्ञात नहीं है, सुनने में तो ये आया। तो उसका वही मांस खाने के उपरांत जिंदा रहेंगे तो कल नहीं परसों मांस नहीं मिला तो क्या करेंगे आप बताओ? स्वतंत्रता के साथ आप लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं। और वह निर्यात के लिए जो किया जा रहा है एक और बड़ा पाप अपराध हो रहा है कि अरबों की संख्या में विदेशों में जनता है, उसके लिए यहां का मांस कहां तक काम में आएगा? कितने आप भेजोगे? आर्टिफिशियल मांस होता है तो बात अलग है, लेकिन आर्टिफिशियल मांस नहीं होता है, मांस तो रियल होता। आज तक जितने भी सामान पैदा हो गए हैं विज्ञान के माध्यम से, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट निश्चित उत्पन्न हो गए, लेकिन आज तक हमने सुना नहीं विज्ञान के माध्यम से डुप्लीकेट मांस का निर्माण किया हो। उसके लिए तो गाय चाहिए, बैली चाहिए, भैंसी चाहिए, घोड़े चाहिए, तो यह बहुत कठिन होता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता, सुनाना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत लगातार मैं कहता आ रहा हूं, लेकिन अब तो माहौल बिल्कुल और शांत होता चला जा रहा है। सुन सुन करके भी महाराज का सुनाना है, कर्तव्य हमारा भी 7:30 बजे आकर के सुनना है, यही तक हो रहा है। हमने सुना कि भैया कार्रवाई कुछ हो रही है क्या? नहीं हो रही है महाराज, धीरे धीरे हो रही। युद्ध स्तर पर भी क्यों नहीं हो रहा है? यदि राजा का कोई दरवाजा गिर जाता तो युद्ध स्तर पर 3 दिन में खड़ा हो सकता है, तो युद्ध स्तर पर यह भी इस प्रकार का भी खड़ा किया जा सकता है। आप लोग अपने हड़ताल के लिए, अपने वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर सकते हैं, तो प्राणियों के वध या मांस निर्यात को रोकने के लिए भी आज के जो डॉक्टर्स हैं वो कर सकते हैं हड़ताल। डॉक्टरों का काम है, और एक डॉक्टर बहुतों के काम में आ सकता है, जैसे विधायक महोदय है, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, उसी प्रकार डॉक्टर का महत्व कम नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध के स्थान पर रणांगण में भी गोली उनके ऊपर चलाई ही नहीं जाती है, क्योंकि वो रक्षक माने जाते हैं। आज के इस युग में भी भयंकर से भयंकर युद्ध हो जाए, वहां पर भी यदि जो जो घाव हो गया उसको बचाने के लिए जा रहा, मरहम पट्टी कर रहा, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा। धर्म युद्ध आज भी होता है, और वह डॉक्टरों के वजह से ही हुआ करता है, धर्म युद्ध बचाव हुआ है कह सकते हैं। आज हजारों के संख्या में डॉक्टर्स हैं, और वो यदि कह दे सत्ता के सामने, नेताओं के सामने, नहीं इस प्रकार का मांस हमारे लिए भी अभिशाप है, और जो खाएगा उसके लिए भी अभिशाप है, इसको बंद होना चाहिए, इस दिशा में डॉक्टर लोग बहुत कम कह पा रहे हैं। अभिशाप कहा ही नहीं होगा, लेकिन नहीं कह सकते ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए आज डॉक्टरों के सामने भी आज हमने बात रखी। जब आप मनुष्य की लात को भी सहन कर सकते हैं, तो हमारी बात को भी अवश्य ही आप सहन करेंगे, अवश्य सहन करेंगे, और ताली बजाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य आपको करना है, फिर कहने के उपरांत आप ताली बजाओ तो ये कानों के लिए बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी कार्य तो किया नहीं जा रहा, और कार्य जो है केवल आज तालियों के लिए ही हाथ काम में आ रहे हैं। काम करके फिर बाद में आप ताली बजाओ, फिर तो कहो कि कितना बड़ा काम हो गया। अनावश्यक न प्रहर तुम, ये वाक्य बहुत मायके का। गाय भैंस बैल ये कोई भी अपराधी नहीं है, जो अपराधी नहीं है बल्कि आपके काम में आए हैं, और उनके ऊपर वृद्धावस्था में आप लोग प्रहार करवाओ ये ठीक नहीं, जवान अवस्था में भी आप प्रहार करके उनके मांस और रक्त को निर्यात करो ये आपके लिए उचित नहीं है, इसलिए आपका ज्ञान अभिशाप सिद्ध हो सकता है, आपके लिए स्वतंत्रता अभिशाप सिद्ध हो सकती है, बुद्धि से काम लो। इतना ही मेरा कहना है, अहिंसा परमो धर्म की।
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं, जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं, तभी तो ऐसा लगता है।
भव्य जीवों को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कालचक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गर, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।